हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। धृति, वेक अप, सुबह हो गई है। उठ जाओ यार धृति, अगर ऐसे ही सोती रही तो नीचे सब नाश्ते के लिए पहुँच जाएंगे और तुम यहाँ सोती ही रह जाओगी। अर्णव काफ़ी देर से धृति को आवाज़ देकर तो कभी उसके चेहरे को छूकर हाथ को हिलाते हुए, गाल थपथपाते हुए उसे उठाने की कोशिश कर रहा था, पर बीती रात देर तक बातें करने का असर था कि धृति की नींद पूरी नहीं हुई थी और वो उठने में खूब नखरे दिखाकर अर्णव को जी खोलकर तंग कर रही थी। कभी खींचते हुए नींद में बुरा सा मुंह बना लेती, कभी अर्णव का हाथ झटकते हुए दूसरी ओर करवट ले लेती, तो कभी नींद में बड़बड़ाने लगती। आज खूब मशक्कत करवा रही थी वो अर्णव से। अर्णव के बहुत उठाने पर धृति ने आखिरकार अपनी नींद को त्यागा। उसने खींचते हुए मिचमिचाते हुए अपनी आंखें खोली। अध खुली अलसाई आंखों के आगे अर्णव का धुंधला सा अक्स उभरा। उसे उठते देखकर अर्णव ने मुस्कुराते हुए उसके माथे को अपने लबों से चूम लिया। गुड मॉर्निंग जान, बदले में धृति भी हौले से मुस्कुरा दी। गुड मॉर्निंग, इसके बाद पल भर ठहरते हुए उसने आगे कहा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? धृति ने अपनी आंखों को मचलते हुए मासूमियत से सवाल किया और उसकी ये क्यूट सी हरकत देखकर अर्णव के लब बेसाख्ता ही मुस्कुरा उठे। ये हमारा कमरा है जानीमन, तो यहाँ मेरे अलावा और कौन होगा? हमारा कमरा? धृति ने खुद में ही बड़बड़ाते हुए निगाहें चारों ओर घुमाई और जैसे ही उसे एहसास हुआ कि वो वाकई में अपने और अर्णव के कमरे में ही है, तो हड़बड़ाते हुए झटके से उठकर बैठ गई। मैं यहाँ कैसे सो गई और आपने मुझे पहले उठाया क्यों नहीं? अब मैं माधुरी और निहारिका को क्या कहूँगी? कल भी दोनों मुझे आपके नाम से छेड़ रही थी, अब तो और टीज करेंगी। और अगर घर में सबको पता चल गया कि उनके मना करने के बावजूद मैं यहाँ आपके साथ सो गई थी, तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी? बेचारी धृति घबराई हुई से खुद में ही बड़बड़ाई जा रही थी। उसे यूं पैनिक करते देखकर अर्णव ने उसके चेहरे को अपनी हथेलियों में थाम लिया। धृति अपनी कत्थई आंखों को बड़ा बड़ा किए घबराई हुई से उसे देखने लगी। अर्णव ने गहरी सांस छोड़ी और बेहद शांत लहजे में कहना शुरू किया, धृति रिलैक्स, इतना पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है। गहरी गहरी सांसें लो, शांत हो जाओ और मेरी बात सुनो। अर्णव के कहे अनुसार धृति ने गहरी सांसें अंदर बाहर की और कुछ शांत हुई तो अर्णव ने आगे कहना शुरू किया, देखो रात को बात करते हुए तुम सो गई थी, तो मेरा मन नहीं किया तुम्हें उठाकर तुम्हारी नींद खराब करने का। रात ज्यादा हो गई, अगर मैं तुम्हें उठाकर भी माधुरी के कमरे तक छोड़ देता तब भी आज दोनों तुम्हें टीज करती हैं और बेवजह उन दोनों की भी नींद खराब हो जाती, तो मैंने तुम्हें यहीं सोने दिया। अब तुम्हें बस इतना करना है कि दोनों में से कोई भी तुम्हें कुछ भी कहे तो कॉन्फिडेंस के साथ बस इतना कहना है कि मैं तुम्हारा पति हूँ और तुम मेरे साथ थी, जिसमें कुछ भी गलत नहीं है। कोई क्राइम नहीं किया है हमने जो तुम इस तरह से घबराओ। रही बात घर वालों की, तो उन्हें कुछ पता नहीं चलेगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। मैं निहारिका और माधुरी दोनों से बात कर लूँगा, वो किसी को कुछ नहीं बताएंगी, तो तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें किसी ऑकवर्ड सिचुएशन में नहीं फंसने दूंगा। चलो अब उठो और जल्दी से नहाकर फ्रेश हो जाओ, नाश्ते का टाइम होने वाला है। अर्णव के समझाने पर धृति काफ़ी हद तक शांत हो गई थी। उसने सहमति में सर हिलाया तो अर्णव ने एक बार फिर उसके माथे को चूम लिया। मैं नीचे जा रहा हूँ, नाश्ते पर इंतज़ार करूँगा तुम्हारा, जल्दी आना और मेरी कही बात याद रखना, किसी के भी सवाल से घबराना मत, कॉन्फिडेंस के साथ उन्हें फेस करना, फिर उन्हें तुम्हें टीज करने का मौका ही नहीं मिलेगा। एक बार फिर उसने प्यार से उसे समझाया और कमरे से बाहर निकल गया। धृति ने मन ही मन उसकी कही बातें दोहराई और झटपट कपड़े लेकर बाथरूम में घुस गई। मधु उठो यार, सुबह हो गई है, सूरज सर चढ़ाया है, नीचे सब जाग भी गए होंगे, अगर किसी ने हमें यहाँ इस वक्त साथ में देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। ओ मेरी लेडी कुंभकर्ण, अब उठ भी जाना। यहाँ बेचारे कबीर की हालत भी कुछ कुछ अर्णव जैसी ही थी। बीती रात देर तक बातें करते करते दोनों टेरेस पर ही सो गए थे। कबीर तो सूरज की किरणों के चेहरे पर पड़ने से नींद से जाग गया, पर माधुरी का बिल्कुल भी जागने का मन नहीं था। अब भी उसने कबीर के सीने पर अपना चेहरा रगड़ा और अपनी बाहों को उसकी पीठ पर कसते हुए खींची हुई सी नींद में ही बड़बड़ाने लगी। मुझे नींद आ रही है यार, सारी रात तुम मुझसे बातें करते रहे और सोने भी नहीं दे रहे। अभी उठ जाओ शोना, नीचे कमरे में जाकर दोबारा सो जाना। कबीर ने प्यार से पुचकारते हुए उसके सर पर हाथ फेरा। अब की बार माधुरी मुंह बनाते हुए वो कबीर से दूर हुई और अलसाई हुई सी उबासियां लेते हुए उठकर खड़ी हो गई। दोनों बाहों को फैलाते हुए जम्हाई ली और जाने के लिए पलटी ही थी कि कबीर ने उसकी कलाई थामते हुए उसे रोक लिया। माधुरी ने अपनी नींद से बोझिल पलकें उसकी ओर उठाई और उनींदी आंखों से उसे देखते हुए अपने गालों को नाराजगी से फुला लिया। अब क्या है, पहले सो रही थी तो सोने नहीं दे रहे थे और अब जा रही हूँ तो जाने नहीं दे रहे। मैडम के सर पर नींद की खुमारी इस कदर सवार थी, उसकी आंखें बार बार झपकते हुए बंद हो जा रही थी, फिर भी नाराजगी जताने से नहीं चूकी। एक मिनट रुको, पहले ये जो बालों का चिड़िया का घोंसला बना हुआ है उसे तो ठीक कर लो। कबीर ने मुस्कुराते हुए उसके बिखरे बालों को अपनी उंगलियों से सवारा और प्यार से उसके गाल को चूम लिया। गुड मॉर्निंग एंड लव यू। लव यू टू। माधुरी ने उसे एक टाइट वाला हक दिया और मुस्कुरा दी और अगले ही पल उसके सीने से लगे हुए ही सो गई। बेचारे कबीर ने बेबसी से अपनी आंखों को भींच लिया और लग गया एक बार फिर अपनी जाने मन को जगाने की कोशिशों में। तीनों लड़कियां जिस रूम में ठहरी थी वो बीच में था। उसके एक कोने अर्नव का रूम था तो दूसरे कोने में टेरेस पर जाने की सीढ़ियां। माधुरी और धृति दोनों दो दिशाओं से बढ़ते हुए एक साथ कमरे के गेट पर पहुंचे। दोनों में से किसी को कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी थी। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए और जैसे ही गेट खोलते हुए उन्होंने कमरे में कदम रखा, निहारिका किसी थानेदारानी जैसे हाथ बांधे उनके सामने आ खड़ी हुई। क्या बात है, सुबह सुबह बड़ी फ्रेश लग रही हो तुम दोनों। मैं से कहां थी तुम दोनों सारी रात? निहारिका का सवाल सुनकर धृति और माधुरी दोनों एक साथ ही बोल पड़ी। मैं तो यहीं थी, सुबह उठकर फ्रेश होने गई थी। मैं सुबह सुबह नीचे गार्डन में चली गई थी। मैंने सारी रात तुम दोनों का इंतजार किया है, इसीलिए अब झूठ बोलने की तो सोचना भी मत। सख्त लहजे में निहारिका ने इतना कहा और तीखी नजरों से दोनों को घूरने लगी। जहां धृति कुछ नर्वस हो गई, वहीं माधुरी तपाक से बोल पड़ी, तो क्यों किया तुमने हमारा इंतजार? हमने थोड़े ना कहा था तुम्हें इंतजार करने को। माधुरी ने मुंह टेढ़ा करते हुए जवाब दिया और कबट की ओर बढ़ गई। अभी वो कुछ कदम आगे बढ़ी ही थी कि पीछे से निहारिका की गंभीर आवाज आई, कबीर के साथ थी ना तुम सारी रात? ये सुनकर माधुरी के आगे बढ़ते कदम ठिटक गए। पल भर को चेहरे पर नर्वसनेस के भाव उभरे, पर जल्दी ही उसने खुद को संभाला और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उसकी ओर पलटते हुए निगाहों से निगाहें मिलाते हुए बोली, हाँ मैं कबीर के साथ थी। हम दोनों इतने दिनों बाद एक दूसरे से वापस मिले थे तो हमारे पास बहुत सारी बातें थी एक दूसरे को बताने के लिए। उन बातों में एक दूसरे के साथ वक्त बिताते हुए रात कब बीत गई हमें पता ही नहीं चला। इतना काफी है या और डिटेल चाहिए? अगर नहीं तो मैं फ्रेश होने जा रही थी, रात भर इतना बोली हूँ कि अब भूख लग गई है मुझे। ये था माधुरी का किलर अंदाज, जो किसी का भी मुंह बंद करने को काफी था। धृति फटी आंखों से उसे बस देखती ही रह गई, जबकि माधुरी शातिर अंदाज में मुस्कुराई और कबर्ड से कपड़े लेकर बाथरूम में चली गई। उसके जाने के बाद निहारिका ने सारा ध्यान धृति पर लगा दिया।
अब तुम भी सच बोल ही दो, तुम जानती हो तो बोलने में वक्त क्यों बर्बाद करना। वू, आज तो धृति ने भी कमाल कर दिया था अपने इस ढांसू अंदाज से। उसने निहारिका के होश उड़ा दिए थे। लापरवाही भरे अंदाज में दिया उसका ये जवाब सुनकर निहारिका चौंक गई। मतलब तुम मानती हो कि तुम सारी रात अर्नव के साथ थी, जबकि घर वालों ने तुम दोनों को रात में एक साथ रहने से मना किया है? निहारिका ने भौं उठाते हुए उसे देखा। घर वालों का जिक्र सुनकर धृति का कॉन्फिडेंस कुछ डगमगाया, पर अगले ही पल जहन में अर्नव की कही बात उभरी और जल्दी ही उसने खुद को संभाल लिया। बातें करते करते हमारी आंख लग गई थी, इसलिए मैं रात को वापस नहीं आ सकी। जानबूझकर हमने बड़ों के बनाए रूल को नहीं तोड़ा है, और वैसे भी हम पति पत्नी हैं। अगर एक रात साथ सो भी गए तो कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, बड़ी बात तो नहीं, पर बन सकती है अगर मैं ये ब्रेकिंग न्यूज़ नीचे जाकर सबको सुना दूँ तो। निहारिका कुटिलता से मुस्कुराई और शरारत से उसकी आँखें चमक उठीं, पर उसकी ये धमकी सुनकर धृति जरा भी ना घबराई। उल्टा उसकी निगाहों से निगाहें मिलाते हुए उसी के अंदाज में जवाब देने लगी, तो मैं भी जाकर मृणाल को बता दूंगी कि तुम्हें उसकी लाइफ में कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी है। तुम कल उसके बारे में मुझसे सवाल पर सवाल किए जा रही थी, अगर मेरा सीक्रेट आउट होगा तो बचोगी तो तुम भी नहीं। धृति उसको धमकाते हुए कुटिलता से मुस्कुराई। उसका पलड़ा भारी था और उसकी बातें और धमकी सुनकर निहारिका शौक से आंखें फाड़े और मुंह खोले उसे देखती ही रह गई थी। पल भर ठहरते हुए धृति ने रहस्यमय अंदाज में मुस्कुराते हुए आगे कहा, मैं जानती हूँ तुम मृणाल में इंटरेस्टेड हो, और अगर तुम उसे लेकर सीरियस हुई या आगे रिश्ते के बारे में कुछ सोचा तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। अब सोचना तुम्हें है कि मुझसे हाथ मिलाकर अपने लिए आगे का रास्ता आसान बनाना है या मुझसे पंगे लेकर अपने लिए मुसीबत खड़ी करनी है। वैसे दोस्त एक दूसरे के सीक्रेट की हिफाजत करते हैं और एक दूसरे की हेल्प भी करते हैं, और कल ही तुमने दोस्ती की है मुझसे, तो एक दूसरे के लिए रास्ते आसान बनाते हैं। निहारिका पहले तो फटी आंखों से स्तब्ध सी उसे देखती ही रह गई। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि ये वही धृति है जिसे वो जानती थी। उसके अंदर आज उसे अर्नव की छवि नजर आई। बहुत चालाक हो तुम, या अर्नव की संगति का असर हो रहा है तुम पर? उसी की ही जबान बोलने लगी हो, वही अंदाज, वही तेवर, कमाल है। निहारिका ने जैसे ही कहा, धृति आंखें बड़ी बड़ी किए उसे देखने लगी। है ना, मुझे भी लगता है उन्होंने मुझे बिगाड़कर अपने जैसा बना लिया है। धृति की ये बात और चेहरे के भाव देखकर निहारिका मुस्कुरा दी। अब लग रही हो तुम पहले वाली धृति। वैसे ये बदलाव इतना भी बुरा नहीं है, अर्नव से डील करने में बहुत काम आएगा। निहारिका की बात सुनकर धृति मुस्कुरा कर रह गई।